जय राधा माधव कुंज बिहारी, His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Radha Gopinath Ki Jai, Shri Shri Giridhar Gopal Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Granthraj Shrimad Bhagavatam Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 12वां अध्याय, अघासुर का वध, श्लोक संख्या 13 है। 10, 12, 13। तो आप में से यदि किसी के पास ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है तो आप वो रख सकते हैं, खोल सकते हैं। अथागनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुखक्रीडनवीक्षणां क्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतरप्यमरै प्रतीक्ष्यते अथाघनामाभ्यपतन्महासुरः तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरै प्रतीक्ष्यते अथाघनामाभ्यपतन्महासुरः तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरै प्रतीक्ष्यते। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात एक महान असुर जिसका नाम था अघासुर वहां पर प्रकट हुआ, जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा देवगण भी कर रहे थे। देवगण प्रतिदिन अमृत का पान करते थे, फिर भी वो इस बड़े असुर से घबराते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते थे। इस असुर को ग्वाल बालों का दिव्य आनंद सहन नहीं हुआ। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितम्। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्व There is some echo coming. Is there some technical problem? Somebody can. When I speak, it gets repeated. Okay, we'll try again. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांग सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नवी मुंबई के भक्तों के साथ पुनः आने का मौका मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे अभी तक याद है, कई वर्ष पहले प्रत्यक्ष रूप से आपका संग प्राप्त हुआ था। मैं वहाँ आया था और आप सबके बीच में हम लोग सत्संग कर पाए थे, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि फिर से आप सबका संग मुझे आज प्राप्त हो रहा है, और वो भी इस कार्तिक महीने में। आशा करते हैं कि आप सबकी तबीयत सब ठीक है, कोरोना महामारी में आप सावधानी रख रहे हैं, और साथ साथ में इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहे हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे दशम स्कंद के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक की। प्रसंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण की पौगंड लीला चल रही है। आप जानते हैं कि आयु के कई विभाजन होते हैं। 5 साल की आयु तक कुमार अवस्था होती है, इसको बाल्यावस्था भी कहते हैं। फिर 6 से 10 साल तक ये है पौगंड अवस्था, और उसके बाद है 15 वर्ष तक कैशोर अवस्था, उसके बाद 16वें वर्ष से यौवन अवस्था प्रारंभ होती है। तो ये लीला उस समय की है जब श्री कृष्ण वृंदावन में अपने कौमार अवस्था के अंत में थे, पौगंड प्राय प्रारंभ होने वाला था। तो उस समय ये अघासुर वहाँ पर आया, अघ नाम का असुर, जो बकासुर और पूतना का भाई था। तो वहाँ जब आया तो उसने देखा कि कितना दिव्य आनंद ये ले रहे हैं सारे बच्चे, श्री कृष्ण के साथ में कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये इनका आनंद देखकर सहन नहीं हुआ अघासुर को। असुरी वृत्ति ये होती है कि वो एक असुर दूसरों के सुख को सहन नहीं कर पाता है, दूसरों के दुख में आनंद लेता है परंतु दूसरों का सुख सहन नहीं होता उसे। जिनकी प्रकृति या जिनका स्वभाव दिव्य होता है उनके लिए विपरीत है, वो दूसरों का दुख नहीं देख पाते हैं और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। वास्तव में जब ये सुख सच्चा सुख होता है, संसारी सुख तो दुख ही है, तो वैष्णव जो होते हैं वो पर दुख दुखी होते हैं कि अन्यों के दुख से बहुत दुख प्राप्त करते हैं। परंतु अघासुर तो वैष्णव नहीं था। जब उसने देखा कि ये ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ इस तरह से आनंदित अवस्था में है, तो उसके हृदय में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वैसे अघासुर जानता था कि श्री कृष्ण ही है जो कि उनके भाई, उसके भाई बकासुर और बहन पूतना के वध का कारण, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से श्री कृष्ण की हत्या करनी ही करनी है मुझे। तो इस उद्देश्य को अपने हृदय में लेके यहाँ पर अघासुर आया था। तो इस अध्याय का प्रारंभ इस तरह से हो रहा है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन प्रातः काल में श्री कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि सुबह का जो प्रसाद नाश्ता होता है वो आज हम घर में नहीं लेंगे, आज हम वन में जाके मित्रों के साथ में लेंगे। तो प्रातः काल में उठकर फिर उन्होंने अपना बाजा बजाया, श्रृंग जिसको कहते हैं, और सारे ग्वाल बालों को उठाया, सारे बछड़ों को भी उठाया। हमें याद रखना है कि इस समय श्री कृष्ण वत्सों का देखभाल करते थे, वत्सचारण लीला करते थे, गोचारण लीला नहीं। तो ये वत्सचारण लीला हुई। तो यहाँ पर वत्स, जैसे पहले श्लोक में बताया गया है, विनिर्गतो वत्स पुरः सरो हरिः। वत्स पुरः सरः का मतलब है कि जितने भी वत्सों के दल थे अलग अलग, उनको सामने रखा और सामने रख के फिर हरि या श्री कृष्ण पीछे चल गए। तो फिर श्री कृष्ण ने जब अपने ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और उनके अपने अपने बछड़े सारे आ गए, कुल मिला के लाखों की संख्या में हुए होंगे उस समय भी, कम से कम हजारों की संख्या में तो थे, तो उनको आगे रखा और फिर विनिर्गतः फिर वो वृंदावन व्रजभूमि अर्थात गांव के बाहर आए, वन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ते नैव साखम पृथुकाः सहस्रशः। तो उस समय श्री कृष्ण के साथ में पृथुकाः मतलब जो लड़के थे, ग्वाल बाल थे, साकम वो उनके साथ श्री कृष्ण के थे, कितने थे? सहस्रशः मतलब हजारों हजारों की संख्या में वो लड़के थे। और उनके सामने उन्होंने ऐसे ही सहस्र उपरी संख्या अन्वितान, तो अपने अपने जो बछड़े थे जिनकी संख्या हजारों में थी उन्होंने अपने सामने रखी थी। तो कुल मिलाकर जो बछड़ों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, ऐसे लग रहा था कि एक बछड़ों का समुद्र आगे चल रहा है। तो सारे बच्चे जो थे बहुत ही सुंदर थे और बच्चों के साथ में उनके प्रसाद की थैली थी, उनके छोटी छोटी बांसुरियाँ थी और छोटे छड़िये थी जिससे वो बछड़ों को नियंत्रित करते थे इत्यादि। तो ये एक दृश्य हमारे सामने शुकदेव गोस्वामी रख रहे हैं। हमारे अंतःकरण में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये दृश्य कैसे हुआ होगा। हम याद कर सकते हैं, अब अपने मन में सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण इतने सारे बछड़ों के साथ, ग्वाल बालों के साथ बड़े आनंद से झूमते झूमते नाचते गाते वो वन की ओर जा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े चंचल होते हैं, ऐसे नहीं कि जब एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो सीधे आराम से चल के जाएंगे, नहीं, जब वो चलते हैं तो उछल कूद के और मस्ती करते करते वो जाते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जितने भी ये बच्चे थे वो सब उछल कूद रहे थे और बहुत ही हर्षित थे, क्योंकि अब उनको सारा दिन श्री कृष्ण का संग मिलने वाला था। तो बछड़े भी तो ऐसे ही थे, आपने यदि बछड़ों को देखा होगा, गायों के जो बछड़े होते हैं, गाय भले शांत होते हैं परंतु बछड़े भी इधर उधर छलांग मारते रहते हैं, उथल पुथल वो कूदते रहते हैं या वहाँ। तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य सारे ब्रजवासियों के सामने था कि श्री कृष्ण और ग्वाल बाल और सारे बछड़े। एक दृष्टि से ये सुखमय नहीं था ब्रजवासियों के लिए, क्योंकि अब श्री कृष्ण वृंदावन गांव को छोड़कर अब वो वन में जा रहे थे, तो सारे ब्रजवासी उनको अभी दिन भर नहीं देख पाएंगे, ये उनको पता था, इसलिए इस बात के दुख का दुख था उनको। परंतु ये सुंदर दृश्य देखकर निश्चित ही सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे। तो यहाँ शुकदेव जी कहते हैं, कृष्ण वत्सैर असंख्यातैहि यूथि कृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्भ लीलाभिहि विजहरुः तत्र तत्रः। तो श्री कृष्ण वत्सैहि मतलब अपने वत्सों के साथ, कितने थे वत्स? असंख्यातैहि, असंख्य थे उनके सारे वत्स। यूथि कृत्य मतलब उनको इकट्ठा किया, स्ववत्सकान् से सारे बच्चे थे वो भी सारे अपने अपने बछड़ों को सबने इकट्ठा किया और फिर अर्भ लीला भी ही, ये बाल लीला कौमार लीला प्रदर्शित करने लगे श्री कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो बछड़े थे वो असंख्य थे, हम लोग कभी सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे हम आंकड़ों की चर्चा कर सकते हैं, परंतु जब हम असंख्य ये शब्द कहते हैं तो ये हमारे कल्पना के बाहर है। तो इसलिए ये शब्द असंख्यात ही शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, भगवान के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, सक्षम है भगवान हर दृष्टि से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण से संबंधित सब कुछ असंख्य है, सब कुछ अनंत है, इसलिए उनके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। इस दृष्टि से हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण के सामने असंख्य बछड़े थे, तो सारे जो ग्वाल बाल थे उनको अपने अपनी माताओं ने सजाया था, तरह तरह के गुंजा मोती कांच इत्यादि के आभूषण से पहने थे, और जब वो वन में जा रहे थे तो उन्होंने अपने आप को भी सजाया फलों से, हरे पत्तों से, फूलों से, मोर पंखों से। इस तरह से ये इनकी रोज की लीला होती थी, अपने आप को इस तरह से ये बच्चे सजाते थे, और फिर किस तरह की क्रीड़ा करते थे। जैसे यहाँ छोटे बच्चे जब मिलते हैं तो आपस में बहुत नटखट होते हैं, मस्ती करते हैं, तो ये सब ये प्रवृत्तियाँ कहाँ से आती हैं? ये सब कृष्ण लीला से आती है मूलतः। यहाँ पे इसका विकृत प्रतिबिंब संसार में दिखाई पड़ता है, परंतु मूल रूप से ये भगवान के धाम में पाए जाते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ग्वाल बाल जो हैं एक दूसरे के प्रसाद के थैली चोरी कर लेते थे, जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे के डब्बे इधर उधर कर देते हैं, और जब किसी लड़के को पता चलता कि उसकी प्रसाद की थैली या डब्बा जो है किसी दूसरे लड़के ने ले लिया है, तो वो अपने प्रसाद की थैली को पाने के लिए वो उस लड़के के पास जाता, तो वो दूसरा लड़का जो है किसी तीसरे लड़के को वो डब्बा दे देता, फिर ये बच्चा उस तीसरे लड़के के पास जाता तो वो तीसरा लड़का किसी चौथे लड़के के पास दे देता था। तो इस तरह से ये लीला होती थी, और फिर जब वो बच्चा जिसकी थैली चोरी हो गई थी वो निराश होकर बैठ जाता था और थोड़ा रोने लग जाता था, तो सारे लड़के हंसते थे और फिर उसकी प्रसाद की थैली वापस दे देते थे उसे। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ के बच्चों की के खेल देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी हो रहा था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इस तरह के खेल और जो चोरी होती है छोटे बच्चों में, वे आज भी भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है, इसलिए क्योंकि ऐसी जो दिव्य क्रीड़ाएं हैं, ये दिव्य आनंद है क्रीड़ा के, ये आध्यात्मिक जगत से उत्पन्न होती हैं। और फिर शुकदेव गोस्वामी एक बहुत ही सुंदर श्लोक में बताते हैं कि कैसे जब वन की ओर जाते तो वन तो बहुत सुंदर होता है ना, और खास करके वृंदावन, तरह तरह के वन हैं, तो श्री कृष्ण अलग अलग वनों में जाते थे प्रतिदिन। जब तक वो वत्सों के साथ में थे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, क्योंकि माता यशोदा को डर था कि बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो खतरे हैं, वहाँ पे जंगली जानवर आ सकते हैं इत्यादि, परंतु वन तो बहुत सारे हैं, तो कभी आज एक वन में गए तो कल दूसरे वन में, तो परसों तीसरे वन में, इस तरह से किसी एक वन में जाके सारे वहाँ का घास समाप्त नहीं करते थे। फिर बार बार जाएंगे उसी वन में तो फिर घास मिलेगा नहीं उनको, चारा कोई मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो अलग अलग वनों में जाते थे। तो जब ऐसे किसी उस नए वन के सौंदर्य का दर्शन करना चाहते थे श्री कृष्ण, तो वो दूर दर्शन करने के लिए वहाँ जाते तो सारे लड़के जो है पीछे पीछे उनके भागते, और ये कहते कि मैं पहले श्री कृष्ण का स्पर्श करूंगा। इस तरह से पुनः पुनः श्री कृष्ण का स्पर्श करके वो जीवन का आनंद लेते थे। ये सच्चा जीवन का आनंद है। यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहम् पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमि रे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो कैसे श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा करते थे। कल शाम को मैं भी एक प्रवचन दे रहा था अंग्रेजी में, तो उस समय में भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की भी चर्चा हो रही थी। सख्य रस विषय था शाम को। तो मैं ये कह रहा था कि कई लोग जो भक्त नहीं होते हैं, या भक्त होते भी हैं तो बहुत नए भक्त होते हैं, तो वो कभी प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हैं कि शुद्ध भक्त बनने के बाद आप भगवान के धाम में चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन में जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके करेंगे क्या? वहाँ पे ना कोई टीवी है, ना कोई सिनेमा है, ना फुटबॉल क्रिकेट है, ना कोई चुनाव हो रहे हैं जिसको के बारे में अखबार में हम पढ़ें, ना ही कोई व्हाट्सएप और फेसबुक है, ना कुछ। तो क्या करेंगे वहाँ जाके? हम तो यही सब करेंगे हम, जिसका वर्णन अभी सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। यदि हम में से कोई ग्वाल बाल बन जाए तो हम ऐसे कार्य करेंगे, कोई गोपी बन जाए तो दूसरे तरह की लीलाएं करेंगे, कोई गाय बन जाए तो और एक तरह की लीला करेंगे। तो यही सब करेंगे, एक दूसरे के प्रसाद की थैली चोरी करेंगे, और वृंदावन के सौंदर्य को देखने के लिए कृष्ण के पीछे पीछे भागेंगे। हाँ, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये लीलाएं दिव्य प्रेम के सर्वोच्च शिखर पे स्थित हैं। इनमें न कोई द्वेष अहंकार आदि का लेश मात्र भी मिलावट है। ये शत प्रतिशत शुद्ध हैं। तो यही सब, ऐसी सब लीलाएं चलती हैं भगवान के धाम में। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, केचित वेणून वादयंतः। तो थोड़े बच्चे जो है अपने वेणु बजाते थे, वेणु वादन। ऐसा नहीं है कि केवल श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, सारे बच्चे बजाते हैं बांसुरी, परंतु श्री कृष्ण की तरह कोई बांसुरी नहीं बजा सकता। श्री कृष्ण का बांसुरी वादन अद्वितीय है, अतुलनीय है। बलराम भी ऐसे बांसुरी नहीं बजा सकते। मानतः श्रृंगाणी केचन, तो कोई अपना बाजा बजाते थे श्रृंग, केचित भृंग ही प्रगायंतः, तो भौरे की जो गुंजन होती है तो कोई उसका नकल करते। भौरे जो होते हैं वो कैसे आवाज करते हैं? तो ये भौरे तो बहुत सारे होते थे, तो भौरे के गुंजन की नकल करते थे थोड़े बच्चे। फिर थोड़े बच्चे क्या कहते थे, को जनता है को के लही परे परे। तो जो कोयल होते थे, कोयल के मीठे स्वरों का भी की भी नकल करते थे। विच्छा या भी प्रधावंतो गच्छंत है साधु हंस कहे ही। फिर कभी कभी दो जो पंछियों के जो उड़ रहे होते थे उनकी छाया के पीछे पीछे भागते थे। जो छाया जो जमीन पर पड़ती थी उड़ते हुए पंछियों की, तो उन छाया के पीछे पीछे भागते थे। तो कभी जो हंस हैं उनके सुंदर जो गति है उसका भी उसकी भी नकल करते थे। तो कोई कभी किसी बतख के साथ में बैठ जाते थे और ऐसे शांति से बतख के पास में जाके बैठ जाते थे। तो कोई मयूर या मोर के नृत्य की नकल करते थे। तो कोई पेड़ों में बैठे हुए बंदरों को बुलाते थे और उनको आकर्षित करते थे। तो कोई बंदरों की तरह ही पेड़ों में लपक के चले जाते थे और बंदरों की नकल करते थे। कोई अपने मुख को विकृत करते थे, बंदरों को चिढ़ाते थे। और जैसे कि बंदर करते हैं ना, बंदर अक्सर अपने मुख का विकार करते हैं। आपने वृंदावन में जाके देखे होंगे मंदिर, जो बंदर होते हैं कैसे व्यवहार करते हैं। फिर जैसे बंदर एक डाली से दूसरे डाली में कूदते हैं, ये बच्चे भी कभी कभी कूदते। कभी कभी बच्चे झरनों में जाते और झरनों में जाके फिर नदी पार भी कर लेते। कभी मेंढकों के साथ भी कूदते, आपने मेंढकों को कूदते हुए देखा होगा। तो बच्चे भी उसी तरह से मेंढकों के पीछे पीछे कूदते। और जब वो अपने परछाई को या अपने प्रतिबिंब को जल में देखते तो बहुत जोर से हंसने लगते। और कहीं जाके जब उनकी अपनी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती, जब वो जोर से किसी जगह में जोर से आवाज़ देते और अपनी ही आवाज़ फिर से आती प्रतिध्वनि के रूप में, तो फिर उसे धिक्कारते इस रूप से कि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है। तो इस तरह से उनकी लीलाएं हुई और होती थीं, और बल्कि वर्तमान काल का प्रयोग करना चाहिए कि अभी भी हो रही हैं, क्योंकि वृंदावन की लीलाएं ये नित्य हैं। इनमें न कोई काल का बंधन है, न कोई स्थान का बंधन है। और इसके बाद शुकदेव गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरो कृतपुण्यपुञ्जाः। तो कोई ऐसे सताम साधु होते हैं जो कि ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहते हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना में ही वो आनंद लेते हैं। तो वो श्री कृष्ण को ये निराकार ब्रह्म समझते हैं, परम सत्य को यही समझते हैं। दास्यम गता नाम पर दैवतेन, तो कोई ऐसे होते हैं जिनका दास्य भाव होता है, वो भगवान कृष्ण को अपना प्रभु मानते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो यह उनका संबंध है श्री कृष्ण के प्रति, दास और प्रभु का। मायाश्रितानां नरदारकेण, कि जो माया के चंगुल में फंसे हुए होते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो कृष्ण है ये केवल एक साधारण मनुष्य है, भगवान नहीं है, ये केवल एक बच्चा है साधारण। परंतु ये जितने भी लोग हैं वो नहीं समझ सकते हैं कि ये जो ग्वाल बाल हैं वृंदावन के, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो श्री कृष्ण के साथ इतनी स्वतंत्रता से, इतनी मधुरता से, इतनी निकटता से, खुलेआम बिना कोई बंधन के श्री कृष्ण के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। इस तरह की लीलाओं में वो शामिल हो रहे हैं। तो इन सब के, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो कर्मी हो, कोई भी हो, ये सब कल्पना नहीं कर सकते कि ये ग्वाल बालों का सौभाग्य कितना है। और पूर्व जन्मों में, न जाने कितने पूर्व जन्मों में उन्होंने कितने ढेर सारे ऐसे भक्ति से संबंधित पुण्य कार्य किए होंगे, किस तरह की पूंजी प्राप्त की होगी उन्होंने ऐसे भक्ति के कार्यों की, कि आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि योगी जन जो होते हैं, बड़े बड़े तपस्या करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम आदि सब करते हैं और अपने मन को भी नियंत्रित करते हैं, परंतु वो इस योग्य नहीं बनते कि श्री कृष्ण के चरण कमलों के रज का एक भी कण वो बन जाए। तो फिर वृंदावन के जो निवासी हैं उनके सौभाग्य का क्या कहना, जो कि श्री कृष्ण के आमने सामने थे। और उसके बाद ये 13वें श्लोक को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, जिसका 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 पठन करके हमने आज के प्रवचन को प्रारंभ किया कि ये पृष्ठभूमि है अघासुर के वहाँ पे आने के पीछे। तो ये हम एक वातावरण, अभी ये एक चित्र हम देख सकते हैं हमारे मन में कि ये सब हो रहा है वृंदावन में, और ये सब चीज़ें अघासुर जब आया तो उसने देखा। जब अघासुर ने ये सब देखा तो पहले ही उसके मन में बहुत घृणा और ईर्ष्या थी, क्रोध था श्री कृष्ण के प्रति कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई और बहन की हत्या की। और जब ये देखा कि ये सब इतना आनंद ले रहे हैं तो उसकी विष के समान जो ईर्ष्या थी वो और भी बढ़ गई। यदि किसी एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या है और वो दूसरा व्यक्ति कोई ऐसे कार्य कर रहा है जिससे उसे बहुत सुख मिल रहा है तो ये पहले व्यक्ति को और भी बुरा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं कि अघासुर के हृदय में ये ईर्ष्या किस तरह से एक प्रज्वलित अग्नि के रूप में जल रही होगी उस समय। तो अघासुर ये भी पूतना और बकासुर की तरह कंस के द्वारा भेजा गया था। तो वहां पर जब वो आया उसने सोचा कि ये कृष्ण ही है जिसने मेरे भाई बकासुर और मेरी बहन पूतना की हत्या की, इसलिए उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए मैं श्री कृष्ण को और कृष्ण के जितने भी ये सब मित्र हैं उन सब की हत्या करूंगा और मेरे भाई और बहन को मैं प्रसन्न करूंगा। और इस तरह से यदि श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मेरे भाई और बहन के लिए पिंड और तर्पण के समान बन जाए तो मेरे भाई बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह से अघासुर ने क्या किया, अपना रूप बदल दिया। ये सब काम रूपी थे असुर, ये सब साधारण असुर नहीं थे। काम रूपी अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने रूप को बदल सकते थे। जैसे पूतना के बारे में भी बताया गया है, काम रूपिणी पूतना दिखने में बहुत कुरूप थी, भयंकर थी, परंतु जब वो श्री कृष्ण के पास आई तो एक बहुत ही सुंदर नवयुवती का रूप धारण करके आई। इसी तरह से अघासुर ने अपना रूप बदल लिया, और कैसा रूप धारण किया, एक अजगर का रूप धारण किया। और ये अजगर कोई साधारण अजगर नहीं था, वैसे भी अजगर बहुत बड़े मोटे होते हैं, मोटे चौड़े लंबे होते हैं, परंतु ये अजगर कैसा था, ये उसकी चौड़ाई एक पहाड़ के समान था और 8 मील उसकी लंबाई थी। और उसने अपने मुंह को जब खोला तो ऐसे लग रहा था कि उसका मुख एक पर्वत के अंदर एक विशाल गुफे के समान था, और वो वहाँ पर सड़क में जाके लेट गया और मुंह खोल के ऐसे बैठा। तो उसकी योजना थी कि जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यहाँ आएंगे तो इस मुंह को एक खेल का कोई साधन समझकर इसमें सब प्रविष्ट होंगे। आपने देखे होंगे कि कई ऐसे उद्यान वगैरह होते हैं बच्चों के लिए खेल के लिए, तो ऐसे कई चीज़ें बनाई जाती हैं जो मुंह खुले होते हैं वो अंदर जाते हैं, कई बच्चे फिर दूसरे ओन से बाहर आते हैं। तो ऐसे सोचा अघासुर ने कि ये बच्चे सारे कृष्ण के साथ अंदर आएंगे और फिर मैं उनको निगल लूँगा और इन सब की हत्या मैं करूँगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने काफ़ी विस्तार में वर्णन किया है कि कितना भयानक ये था ये असुर, अजगर के रूप में भी ऐसे लग रहा था कि उसका जो जीभ है वो एक महान राजमार्ग की तरह लग रहा था, और उसके सांस जो है गर्म तूफान की तरह बह रहा था, उसकी आंखें जो है लाल लाल अग्नि की तरह चमक रही थी। तो उसका जो ऊपर का होंठ है वो बादलों को छू रहा था। तो सारे बच्चों ने जब वहाँ अघासुर के इस रूप को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये कोई एक ऐसे अपने उनके खेल के लिए कोई साधन होंगे, उनके हृदय में बिल्कुल कोई डर नहीं हुआ। पहले जो बकासुर के साथ हुआ था उनको पता था कि श्री कृष्ण हमारे पास हमारे साथ में हैं, इसलिए उन्होंने देखा, आपस में चर्चा करने लगे कि अरे हे मित्र, ये बताइए ये कौन है, ये मरा हुआ है या जीवित है, क्या इसने अपने मुंह को खोला है केवल हमें निगलने के लिए या हमारे लिए एक खेलने का एक स्थान है। फिर उन्होंने निर्णय ये लिया कि हम अंदर जा सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ परस्पर चर्चा कर रहे थे कि वर्णन कर रहे थे कि ये सांप कैसे दिख रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि यदि ये सांप हमें मारने के लिए आया है तो जैसे बकासुर का वध हुआ वैसे ही इस सांप का भी वध होगा, तो क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पास हैं। तो श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद की ओर सबने देखा और फिर जोर जोर से हंसते हुए ताली बजाते हुए बड़े आनंद के भाव में वो उन्होंने सबने प्रवेश कर लिया अघासुर के मुख में। फिर भी जब ये हुआ, श्री कृष्ण अंदर नहीं गए थे, वो बाहर खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे ग्वाल बाल मित्र सब अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए हैं, अरे रे रे ये क्या हो गया, वो उनको मना करना चाहते थे परंतु समय नहीं मिला, उनको मना करने से पहले ही ये सारे अंदर चले गए थे। तो श्री कृष्ण सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, कैसे उनको रोका जाए। जैसे ही श्री कृष्ण इस तरह से सोच रहे थे, एक के बाद एक सारे बच्चे अंदर चले गए, परंतु अघासुर ने उनको निगल नहीं लिया, क्योंकि अघासुर श्री कृष्ण की राह देख रहा था। केवल ग्वाल बालों की हत्या करने से अघासुर का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए वो सोच रहा था कि कैसे कब श्री कृष्ण मेरे मुख में प्रविष्ट होंगे। तो श्री कृष्ण के लिए असहनीय था अपने मित्रों से दूर होना। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के मित्र श्री कृष्ण से विरह को तनिक भी सहन नहीं कर सकते थे, एक क्षण के लिए भी नहीं, उसी तरह से श्री कृष्ण भी अपने मित्रों से दूर नहीं होना चाहते थे। तो इसलिए सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योगमाया शक्ति के द्वारा एक क्षणिक भ्रम में पड़ गए श्री कृष्ण। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने लीलाओं के रस की वृद्धि करने के लिए, अपने रस के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए अपने आप को अपने लीला शक्ति के अधीन कर देते हैं, जिसके कारण श्री कृष्ण भी एक दो क्षणों के लिए कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो श्री कृष्ण ने जब सोचा कि अब क्या करना चाहिए, ऐसे दो उद्देश्य होने चाहिए, एक इस असुर का वध करना और साथ साथ मेरे ग्वाल बाल मित्रों को बचाना। अब मेरे ग्वाल बाल मित्र जो हैं ये तो अघासुर के अंदर हैं, यदि मैंने श्री अघासुर की हत्या की तो फिर मेरे मित्रों की भी हत्या होगी, तो बड़ी विडंबना है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि एक ही उपाय है, ये क्या है उपाय, कि मुझे स्वयं अघासुर के मुख में प्रवेश करना चाहिए। तो फिर उन्होंने प्रवेश कर लिया और जैसे ही श्री कृष्ण अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए तो जो बादलों के पीछे छुपे हुए देवगण ये सब देख रहे थे, उन्होंने हाहाकार करना शुरू कर दिया। वो तो बहुत चिंतित हो गए, वो स्वयं घबराते थे अघासुर से, और हम देखा कि श्री कृष्ण भी अंदर चले गए तो बहुत घबरा गए, चिंतित हो गए। तो दूसरी ओर कंस के जो मित्र थे, अन्य असुर थे, वो तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो अब श्री कृष्ण जब अंदर गए अघासुर के मुख के, तो उन्होंने अपने आप को बड़ा किया, अपने शरीर का विस्तार इस तरह से किया कि अघासुर कुछ नहीं कर पाया। अघासुर ने अपने शरीर को और भी बड़ा किया, परंतु श्री कृष्ण इतने बड़े हो गए कि अघासुर सांस भी नहीं ले पाया। और फिर श्री कृष्ण और उसकी जो आंखें हैं अघासुर के, वो इधर उधर घूम रहे थे, और फिर वो अघासुर के शरीर से उसकी प्राण वायु जो है उसके सर के ऊपर जो एक छेद है उसमें से फूट कर निकल आया, तो उसका सर फूट गया और वहाँ से फिर उसकी आत्मा बाहर निकल आई। और शुकदेव गोस्वामी एक अद्भुत दृश्य का वर्णन करते हैं कि जब अघासुर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली सर के अंदर एक छेद से, तो श्री कृष्ण ने सारे ग्वालों को और ग्वाल बाल मित्रों को और बछड़ों को पुनः जीवित कर दिया, परंतु ये जो आत्मा है अघासुर की वो बहुत ही तेजस्वी था, प्रकाशमान था, और हर दिशा में इसकी रोशनी फैल रही थी, प्रकाश फैल रहा था। और थोड़े समय के लिए ये वैसे ही उस शरीर के ऊपर रहा, सबने, सारे बच्चों ने देखा, और फिर ये अघासुर की आत्मा आके सीधे अंदर आ गई, श्री कृष्ण के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई। इसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान में लीन होना। तो दो प्रकार के सायुज्य मुक्ति हैं, होते हैं। एक, भगवान श्री कृष्ण की निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना, और दूसरे प्रकार की सायुज्य मुक्ति है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में लीन होना। तो अघासुर को इस तरह से ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, परंतु श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ कई प्रमाण दिए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये सायुज्य मुक्ति नहीं थी, आगे चल के अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान विष्णु की तरह ही वैकुंठ लोक में एक रूप प्राप्त होना। तो ये वास्तव में बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब भगवान श्री कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो निश्चित ही उसको मुक्त मुक्त करते हैं। कभी कभी ऐसे वो असुरों को निराकार ब्रह्म में लीन करा देते हैं, तो कभी उनको वैकुंठ लोक में ले जाते हैं, और कभी कभी पूतना की तरह उनको गोलोक वृंदावन में भी ले जाते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। परंतु जब भगवान के अन्य अवतार असुरों का वध करते हैं तो उस समय ये सारे असुर जो हैं इनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, किसी एक श्रेष्ठ गति की प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु ऐसा निश्चित नहीं है कि वो भौतिक जगत से मुक्त हो जाए। परंतु श्री कृष्ण जब किसी असुर की हत्या करते हैं तो निश्चित ही वो असुर मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस 33वें श्लोक के तात्पर्य में विस्तार में समझाते हैं कि वास्तव में अघासुर को ये सारूप्य मुक्ति मिली, और ये श्री कृष्ण की कृपा का एक प्रमाण है, एक उदाहरण है। तो यदि ऐसे पूछा जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद अर्थात सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के बाद फिर कैसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका उत्तर ये है कि ये इसी के समान है जैसे जय और विजय, जिन्होंने तीन जन्म लिए और तीन जन्म के बाद फिर उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई, ठीक उसी तरह से अघासुर को भी ऐसी ही मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इसके बाद सारे जो देवता है वो बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने अपने नंदन कानन से फूलों की वृष्टि करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे, तरह तरह के वाद्य बजने लगे और ब्राह्मण जो हैं उन्होंने वैदिक मंत्रों का पठन शुरू किया। इस तरह से एक बहुत ही आनंद का वातावरण सारे ब्रह्मांड में फैल गया, क्योंकि ये भयंकर असुर अघासुर का वध अब हो चुका था। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा और सुना कि यहाँ ये जय जयकार हो रहा है, तो उनके भी उत्सुकता हुई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं, यदि सड़क पे नीचे कोई अचानक बहुत सारी आवाजें सुनाई दी तो हम खिड़की में जाएंगे ना देखने के लिए कि क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है नीचे क्या है। तो ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, सारे स्वर्ग लोक में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, क्या हुआ। तो फिर उनको पता चला कि क्या हो गया है। और श्री कृष्ण का जब इस तरह से उन्होंने गुणगान सुना और देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। दृष्ट्वा मही ईशस्य जगाम विस्मयम्। दृष्ट्वा, जब ब्रह्मा जी ने देखा मही इस तरह का गुणगान ईशस्य श्री कृष्ण का, जगाम विस्मयम्, वो विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए वो। तो और उसके बाद अघासुर का शरीर वहीं पे पड़ा रहा काफी लंबे समय तक, और फिर वो सूखने लगा और फिर वो एक क्रीड़ा का स्थान बन गया, पर्यटक, एक पर्यटन के लिए एक स्थान बन गया। तो कई ब्रजवासीगण भी आते थे देखने के लिए, देखो ये कैसे महान असुर यहाँ पे आया था। और इस तरह इस लीला के बाद, ये लीला तब हुई जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के आयु के थे, परंतु इस लीला का खुलासा, इस रहस्य का खुलासा 1 वर्ष बाद हुआ जब श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हो चुके थे। तो ऐसा क्यों हुआ? जब कोई लीला आज हुई है तो 1 साल बाद में ग्वाल बाल जाके ब्रजवासियों से कहें कि ये लीला आज हुई, ये ऐसे कैसे हुआ? तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था, और फिर शुकदेव गोस्वामी उसका उत्तर देंगे, परंतु ये उत्तर आने वाले अध्यायों में प्राप्त होगा। और इसका उत्तर वो ब्रह्म विमोहन लीला के वर्णन के द्वारा करेंगे। जिस श्लोक का पठन हमने प्रारंभ में किया, इस श्लोक के जिससे कि प्रवचन की शुरुआत की, उसके तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद जी पूछते हैं कि हम कहते हैं कि हम ऐसे पूछ सकते हैं कि जब श्री कृष्ण और अपने ग्वाल बाल मित्र इतने सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे थे, तो ऐसे एक असुर कैसे आके इसमें रुकावट डाल सकता है? आखिर ये तो एक असुर है, भगवान की लीला में विघ्न डालने की शक्ति कैसे हो सकती है किसी असुर की? तो पहली बात तो ये है कि ये भी एक लीला ही है, श्री कृष्ण की लीला के रस को बढ़ाने के लिए। परंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल मित्रों की दिव्य लीलाएं रोकी नहीं जा सकती थी, परंतु यदि ये इन लीलाओं को रोकते नहीं तो फिर वो आगे चल के अपना भोजन या अपना प्रसाद नहीं पा सकते थे। इसलिए उनको भोजन पाने का जब समय हुआ तो किसी न किसी तरह से उनके खेल को रोकना अनिवार्य था। तो ऐसे कोई न कोई असुर आ जाता था उस समय भोजन के समय, फिर कृष्ण असुर का वध करते थे और फिर सब लोग बैठ के अपना प्रसाद लेते थे, बाद में श्री कृष्ण का गुणगान करते थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि इसी प्रकार की विविधता जो है ये आनंद की जननी है। एक ही चीज हम दिन भर करते रहें, प्रतिदिन करते रहें तो हम ऊब जाएंगे, परंतु हमारे कार्यों में, हमारे स्थान में थोड़ी विविधता चाहिए। एक ही व्यक्ति के साथ दिन भर, प्रतिदिन, सालों साल तक करते रहें, वही कार्य करते रहें तो उतना आनंद नहीं आता है। परंतु हम अलग अलग व्यक्तियों का संग करें, अलग अलग कार्य करें, अलग अलग स्थानों में जाएं, तो फिर आनंद की वृद्धि होती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी विविधता लाने के लिए और ग्वाल बालों को सही समय पर अपना प्रसाद दिलाने के लिए ये भगवान की योजना से ये असुर प्रतिदिन आया करते थे। एक दिन अघासुर आया तो दूसरे दिन कोई दूसरा असुर आया, तो प्राय प्रतिदिन ऐसे कोई ना कोई असुर आते थे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने शुकदेव गोस्वामी ने केवल ऐसे महत्वपूर्ण या गिने चुने असुरों का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में। वैसे तो बहुत सारे अन्य असुर भी आए होंगे वहां पर। इस तरह से ये 12वें अध्याय का, दशम स्कंद के 12वें अध्याय का वर्णन हमने करने का प्रयास आज किया आपके सामने। इस कार्तिक महीने में ऐसे वृंदावन की लीलाओं को सुनना बहुत ही अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, आप यदि पूछना चाहें। देखिए, कम से कम इतना तो हम कर पा रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा तो हम प्रवचन सुन पा रहे हैं, भक्तों का संग प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सब नहीं होता तो ये भी हम नहीं कर पाते। हम केवल अपने अपने घरों में रह जाते और हमको बिल्कुल कोई संग नहीं मिलता। अभी तो कम से कम इंटरनेट के माध्यम से संग तो मिल रहा है हमें। और वैसे देखा जाए तो प्रत्यक्ष भक्तों के संग में आके बैठ के सुनना यही श्रेष्ठ है। परंतु जब ये संभव नहीं है तो इस तरह का इंटरनेट के द्वारा संग प्राप्त करना भी अच्छा है। परंतु हमें ये भी देखना चाहिए, यदि हमें वही गंभीरता चाहिए, वही लाभ चाहिए श्रवण का, जो हमें मंदिर में जाके बैठ के सुनने में प्राप्त होता है, तो हमें वही एक शिष्टाचार का, वही एक संयम का पालन करना चाहिए। जब हम इंटरनेट के या कंप्यूटर के सामने या फोन के सामने बैठे हुए हैं प्रवचन सुनते समय, तो हमें सोचना चाहिए कि हम मंदिर में बैठ के सुन रहे हैं। तो जैसा हमारा व्यवहार मंदिर में बैठ के हुआ होता, वैसे ही घर में कंप्यूटर या फोन के सामने बैठ के प्रवचन सुनते समय ही होना चाहिए। जब हम मंदिर में बैठेंगे तो हम मंदिर में बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं, तो हम पैर फैला के नहीं बैठेंगे, हम सोएंगे नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, हमारे कपड़े भी सही होंगे, है ना, क्योंकि सब लोग हमको देख रहे हैं ना, वीडियो में सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग प्रवचन दे, कई मैं देखा जूम कॉल, जब अभी तो कितने हो रहे हैं जूम कॉल, तो वीडियो में कई लोग प्रवचन सुनते सुनते कोई भोजन ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो कोई दूसरों से इशारों से कोई बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसे बस बिना कमीज के बैठे हैं, तो कोई पैर फैला के बैठे हैं, इस तरह से कोई इधर उधर जाते हैं, आते जाते हैं। तो यदि हमें वही लाभ चाहिए जो मंदिर में बैठ के भक्तों के संग में भागवत श्रवण करने में मिलता है, तो हमें उसी गंभीरता को लेना, स्वीकार करना चाहिए यहाँ पर भी। इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने घर में बैठे हैं ना, तो चलो यहाँ पे थोड़ा आराम से हम सुन लेंगे। नहीं, जैसे मंदिर में बैठ के सुनते हैं वैसे घर में भी बैठ के या आश्रम में बैठ के भी हमें एक स्थान में बैठ के सुनना चाहिए। ठीक है, होते हैं परंतु अपने शुद्ध मूल रूप में। ईर्ष्या नहीं होती है, ईर्ष्या भी होती है जैसे चंद्रावली और राधा रानी इत्यादि, परंतु वो सब दिव्य प्रेम पर आधारित हैं। उनमें कोई नकारात्मकता नहीं रहती है, नेगेटिविटी नकारात्मकता नहीं रहती है उसमें। ये सब केवल दिव्य विविधता है, रस का वर्धन करने के लिए, रस को और भी मीठा करने के लिए। हाँ, जैसे प्रवचन के समय मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ा था कि सनातन गोस्वामी अपने बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण असीमित हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, उनकी योग्यता क्षमता या अन्य कोई भी उनसे जो संबंधित गुण हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसी प्रकार से उनका धाम भी इतना विशाल है कि इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो उनके धाम में सब कुछ असंख्य असीमित है, हमारे कल्पना के बाहर है। तो ये कोई साधारण स्थान नहीं है वृंदावन, ये भगवान का धाम है। तो इसलिए भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अचिंत्य अचिंत्य मतलब हमारे चिंतन या कल्पना के बाहर। इसलिए यह श्रद्धा की बात है, जब हम बार बार ऐसे श्रवण करेंगे वैसे वैसे हमारी ये श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे हमें आदेश मिले हैं महाराज जी से, वैसे उनका आदेशों का पालन करना है। बस जैसे कि प्रभुपाद जी कहा करते थे, बार बार नए चीजों के आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य जो है वो वही है, वैसे है जैसे है वैसे ही बस रहे, और ये पर्याप्त है हम सबके लिए। तो जो भी हमने आदेश सुने हैं आज तक, बस उन्हीं को करते रहना है, और कोई नया उत्तर इसमें नहीं है। बिल्कुल, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं अपने प्रार्थनाओं में, वैसे ही करना चाहिए। तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक। ये समझना चाहिए कि ये कष्ट इसलिए हो रहा है कि ये मेरी गलती है, तो मैंने कोई गलत काम किए हैं अभी या भूतकाल में और इसका फल मुझे मिल रहा है, तो अन्यों को दोष नहीं देना चाहिए, ये मेरी ही गलती है। और बस इस दुख को कष्ट को सहन करते करते हमें भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु प्रतीक्षा कैसे करनी चाहिए? केवल हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठने से नहीं, परंतु हृद्वाग् वपुर्भिर् विदधन् नमस्ते, तो अपने हृदय से, अपने वाणी से और अपने इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा भगवान की सेवा में रहना। तो इस तरह से हमें इन ऐसी परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हरे कृष्णा बलदेव प्रभु। नहीं, बस ऐसे धन्यवाद कि मुझे सेवा का कुछ मौका दिया आप सबने, इसीलिए।